नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अभी हम श्री वृंदावन धाम के परिक्रमा मार्ग पर बैठे हुए हैं। वृंदावन का परिक्रमा मार्ग है, वृंदावन दाहिनी हो रहे हैं और हम आगे बढ़ते हैं ऐसे। फिर आगे जाके गोल घूमता है वो, फिर हम लोग वापस हमारे जगह पर पहुंच जाते हैं तो परिक्रमा पूरी हो जाती है। तो वृंदावन के परिक्रमा मार्ग जो है उसके बहुत सारे रास्ते में, जितना भी रास्ता है, बहुत सारा रास्ता जितना भी है, उसके लेफ्ट साइड में यमुना आती है और राइट में वृंदावन धाम है। देखिए जहाँ पर आगे जाएंगे यमुना जी आपको मिलती रहेगी, वो आपके साथ ही टर्न करेगी। ऐसे कहा गया है कि अगर आपकी आँख वृंदावन है तो काजल यमुना है, पूरे वृंदावन को परिक्रमा करती है वो कंप्लीट, फिर आगे चले जाती है। ये यमुना का किनारा जो है ना, ये सबसे शक्तिशाली जगह है। यमुना जी को ऐसा वर्णन किया है कि जो प्रेम से देखते हैं यमुना जी को, उनको कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाता है, ऐसा वरदान है यमुना जी को। यमुना जी का इतिहास ऐसा है कि सूर्यदेव का विवाह उषा से हुआ। मैंने कहानी बताया क्या? ये नहीं ना, सब लोगों को सुनाई पड़ रहा है क्या? जो जूता के स्टैंड में टेक के बैठे हैं वो सो रहे हैं कि जग रहे हैं? हरी बोल। जहाँ पर भी टेकने का मौका मिला ना भोजन के बाद में, तो क्या होता है बोलो ना? भोजन के बाद टेकने का मौका मिला तो क्या होता है? इंदिरा देवी तुरंत आ जाती। इसलिए अगर कथा सुनना है तो सहारा मत लो, आगे बैठो। जैसे मैं बैठा हूँ, मेरे पास सहारा पीछे है लेकिन मैं बैठा हूँ, क्योंकि मैं सो गया तो हरे कृष्णा। तो सूर्यदेव का विवाह किससे हुआ? उषा देवी से हुआ। तो उषा देवी सूर्यदेव की ख्याति से बड़ी प्रभावित थी कि ये बहुत तेजस्वी हैं बहुत, लेकिन जब शादी हुई तो उनको पता चला कि कितना तेज है उनके अंदर। तो बड़ी वो डरी डरी सी थी, यू नो ग्रेट हस्बैंड। तो जब पहली बार संबंध हुआ तो वो डर डर के संबंध हुआ, क्योंकि उनको इतना तेज सहन नहीं हुआ, बड़ी डर गई थी वो। तो सूर्यदेव ने कहा कि ये संबंध का जो बालक जन्म होगा ना, उससे पूरी दुनिया डरेगी, क्योंकि डर के भाव से आप मेरा संबंध किया है, तो ऐसा पुत्र प्राप्त होगा जिससे पूरा विश्व डरेगा, और वो कौन है? यमराज। तो यमराज सूर्यदेव के पहले पुत्र हैं। फिर उषा देवी को थोड़ा सा पश्चाताप हुआ कि अरे आखिर पति है मेरे, मैंने शादी की है उनसे। तो अगली बार मन की तैयारी करके वो पति के पास सेवा करने गई, तो संबंध में बड़े प्रेम से सेवा किया उन्होंने। तो सूर्यदेव ने कहा कि इस संबंध के कारण जो संतान होगी वो एक कन्या होगी, और वो नदी रूप होगी, और उसके जल में जो भी स्नान करेगा वो पहले वाले पुत्र के भय से मुक्त हो जाएगा, ऐसा है। तो यमराज और यमुना ये दोनों भाई बहन हैं, और यमराज बड़े भागवत भक्त हैं भगवान के। यमराज कोई डरावनी वस्तु नहीं है। यमराज से डरते वही लोग हैं जो पाप करते हैं। पुलिस से कौन डरता है? चोर, और क्या, जो सभ्य गृहस्थ है उसको पुलिस डरने की जरूरत क्या है? आ जाओ, जो करना है तहकीकात कर लो, जो करना है कर लो, कोई गुनाह ही नहीं किया तो क्या फर्क पड़ता है उससे। तो चोर पुलिस से वही डरता है जो चोर होता है, तो जो पापी होता है वही यमराज से डरता है और यमराज उसको डराते हैं। लेकिन यमराज ने अपने भक्तों को, अपने मतलब असिस्टेंट लोगों को, उसको क्या कहते हैं? यस, यमदूत कहते हैं, यमदूत, मैसेंजर्स ऑफ गॉड, मैसेंजर ऑफ डेथ ऑफ गॉड, गॉड ऑफ डेथ सॉरी। तो उन्होंने अपने यमदूतों को बता के रखा है, सुनिए ध्यान से, हाँ अगर अब तो आपको उनसे बचना है तो सुन लो, तो सो जाओ। सब लोगों, कितने लोगों को यमराज से बचना है बताओ? सब लोग ने हाथ ऊपर करने गए, सब लोग ने हाथ नहीं ऊपर किया है। हरी बोल। हम सब लोगों को यमराज से बचना है, ध्यान रखना। तो यमराज ने एक प्रसंग, भागवत में बड़ी कथा आती है उसकी, एक प्रसंग में बताया है यमदूतों को कि जहां पर भगवान का नाम लेते हैं लोग, वहां पर नहीं जाना है आपको। जहां पर सारा नियम पालन करके तुलसी माला पहनते हैं, उस तुलसी माला वाले के पास आपको जाना नहीं है। जिसने तुलसी का काष्ठ, सूखे हुए तुलसी का लकड़ी जिसने अपने छाती पर रखा हुआ है मरते हुए, उसके पास आपको जाना नहीं है। जो भगवान का प्रसाद खाते हैं, सब नियम पालन करते हैं, भगवान के नाम का जप करते हैं, भक्तों से संग करते हैं, उनके पास आपको जाना नहीं है। जहाँ भगवान के नाम का कीर्तन हो रहा है वहाँ नहीं आपको जाना है, बाकी सब जगह जाओ। जहाँ जहाँ पापी लोग हैं उनको पकड़ो और लेके आओ, हम उनको दंड देंगे। इसलिए जो मरता है ना व्यक्ति, जब कोई मरता है तो हमारे हॉस्पिटल में, ये हमारे हॉस्पिस में, सब जगह ऐसी व्यवस्था है कि हम लोग जोर जोर से कीर्तन करते हैं। उससे अगर यमदूत को आना भी है तो नहीं आ सकते, उनको भगा देते हैं, क्योंकि यमदूत भगवान के नाम के कीर्तन से बहुत डरते हैं, एक्चुअली डर के भाग जाते हैं। हमारी माँ भी बचपन में कहती थी, और कितने लोगों की माँ ने बचपन में आपको कहा होगा, जब डर लगता है तो राम का नाम लो, क्योंकि डर राम नाम से खुद डरता है और भाग जाता है। तो यमराज के लायक अगर हमने कुछ पाप किया हो जिससे वो हमको पकड़े, और अभी हमको पछतावा हो गया है कि हमको बचना है उससे, तो हमको यमुना जी का सहारा लेना चाहिए। यमुना जी नहीं आपके पास तो भगवान के नाम का सहारा लेना चाहिए। भगवान के नाम का सहारा लेंगे तो यमराज यमदूत आपको नहीं छुएंगे। तो यमुना देवी में जो स्नान करता है, यमुना देवी गोलोक वृंदावन में रहती है देवी के रूप में, लेकिन भगवान की इच्छा के अनुसार फिर वो वृंदावन यहाँ पर पृथ्वी पर आ जाती है। पृथ्वी पर जब आती है तो वृंदावन, यमुना, गोवर्धन तीनों साथ में आते हैं, अलग अलग नहीं आ सकते हैं। ना वृंदावन आएगा यमुना गोवर्धन के बिना, ना गोवर्धन आएगा यमुना वृंदावन के बिना, ना यमुना आएगी वृंदावन गोवर्धन के बिना, वो तीनों साथ में आते हैं हमेशा। तो तभी जब नीचे आई तो कालिंद पर्वत जो है यमुनोत्री, वहाँ से उनका उगम हुआ है, और बहुत अंतर काट काट के फिर वो वृंदावन में प्रवेश करती है। और जहाँ जहाँ जाती है वो सब पवित्र स्थान है उनका किनारा, और जो जो स्नान करते हैं वो पाप से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन फिर भी जब वो वृंदावन में आती है तो वो एडेड बेनिफिट देती है, मोर बेनिफिट्स देन बिफोर। पापों के साथ में पुण्य को भी नष्ट करती है, और पुण्य के साथ हमको कृष्ण प्रेम भी देती है। और पुण्य को नष्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पुण्य करेंगे दोबारा जन्म लेंगे पुण्य का फल भोगने के लिए। और जब पुण्य का फल भोगने के लिए जन्म लेंगे तो शरीर प्राप्त होगा, और शरीर प्राप्त होगा तो जन्म, मृत्यु, बीमारी, बुढ़ापा तो आ गया ना उसके साथ साथ, पैकेज है पूरा वो। हाँ, लड्डू खाने का फल मिला आपको, लड्डू खाने के लिए आपको लगेगा शरीर, जिसमें होगी जबान, जिससे आप लड्डू खा के उसका आनंद लेंगे, लेकिन वो शरीर प्राप्त करने के, जबान प्राप्त करने के लिए आपको शरीर प्राप्त करना पड़ेगा। शरीर प्राप्त होगा तो जन्म, मृत्यु, जरा व्याधि साथ साथ उसके आएंगे पैकेज के रूप में। सोचो आप जरा इस बारे में, एक चीज़ के लिए कितनी चीज़ पैकेट आती साथ में, है ना। तो इस तरह से पाप से पुण्य अधिक खतरनाक होता है। क्यों? क्योंकि पाप करने से पाप का फल मिलता है, बुरा फल। हम दुख भोगते हैं, कष्ट भोगते हैं, लेकिन कष्ट में और दुख में भगवान की याद आती है। लेकिन पुण्य करने के बाद में सुख मिलता है, और सुख में भगवान की याद नहीं आती। अरे इतना सुख है तो भगवान की जरूरत क्या है हमको। अभी इनके बच्चों की एग्जाम आती है ना, एग्जाम जब भी, तो हमारी मीरा रोड के मंदिर में बहुत बच्चे लोग आते हैं, बहुत सुबह सुबह आते हैं किताब हाथ में और दर्शन करने आते हैं। भाई एग्जाम आ रही है, भैया भगवान कृपा करो। एग्जाम हो गई फिर भूल जाते हैं, पास हो गए फिर पेड़े बांटते हैं, भूल जाते हैं। सुख मिला गया तो भूल जाते हैं, टेंशन आया तो भगवान के पास आते हैं। तो इसलिए बंद है वो, बंद है। तो कहने का मतलब यह है कि सुख में दुख में स्मरण करे सब, सुन रहे आप, बताएंगे दोहराएंगे, दुख में स्मरण करे सब, सुख में करे न कोई। जो सुख में सिमरण करे उसे दुख काहे को होए, ये कबीर जी ने कहा है। तो भक्ति का मतलब यह है कि ना सुख में ना दुख में, दोनों में भगवान की याद करते रहता है, हर समय करते रहता है, प्रतिकूल अनुकूल फेवरेबल अनफेवरेबल को देखता नहीं, हर स्थिति जिसमें आप जीवित हैं वो भगवान के नाम के लिए उनकी याद के लिए अनुकूल है। और जो जीव भगवान को हमेशा याद करता है उसका सुख दुख का स्पर्श नहीं होता है उसको। मात्रा स्पर्शांश तो कौन थे या हाँ क्या नाम आगे, शीतोष्ण सुख दुख दा आगमा पायनो नित्यस ताम्स तिथिस्वत्व भारत, ताम्स तिथिक्षस्व भारत, कि सुख दुख गर्मी सर्दी मान अपमान यश अपयश ये जीवन में चलते रहता है, कभी ऊपर हो कभी नीचे हो, कभी हार गिरता है कभी टमाटर गिरते हैं, हाँ ये दुनिया का रिवाज है। अभी जीत जाएंगे इलेक्शन तो हार डालेंगे बड़े बड़े, और हार जाएंगे तो पत्थर मारेंगे, ये दुनिया का रिवाज है, कभी पहाड़ पे चढ़ाएंगे कभी पटक देंगे आपको नीचे। तो भक्त लोग जो है इसमें इंटरेस्ट लेते नहीं है। आद्यंतु वंतु कौन्तेया नतेषु रमते बुधा, मुझे वो श्लोक कौन सा था, ये संसर्या संस्पर्शया भोगा दुख योनया दुख योनय एवते आद्यंतु वंतु कौन्तेया नतेषु रमते बुधा। इसका मतलब क्या है कि बुद्धिमान लोग जो होते हैं ना वो कभी भी ऐसे सुख में रुचि लेते नहीं है जिसकी शुरुआत है उसका अंत है, मतलब लिमिटेड है, वो समय के साथ बंधा हुआ है, ख़त्म होने वाला है। ऐसे ख़त्म होने वाले टेम्पररी सुख के पीछे बुद्धिमान व्यक्ति भागता नहीं है कभी भी। तो कबीर जी कह रहे हैं कि अगर आपको आदत है दुख में याद करने की अच्छी बात है, लेकिन सुख में अगर याद करने की प्रैक्टिस करोगे फिर आपको दुखी नहीं होगा। तो दुख के लिए याद करने की जरूरत नहीं है, आप सुख में याद करते रहो तो उस आदमी को दुखी नहीं होगा। सो आपको क्या पसंद है, दुख आया दुख का तकलीफ हो रहा है फिर आप भगवान को याद कर रहे हैं, ऐसा आपको अच्छा लगेगा कि दुखी ना आए, क्या लगे अच्छा लगेगा आपको, दुखी नहीं आना चाहिए ना। तो दुख अगर नहीं आना चाहिए आपको तो आपको भगवान का नाम याद करना है। क्यों, अगर आप कहेंगे आपको दुख नहीं होता है क्या, नहीं, दुखी घटनाएं जीवन में घटती रहती हैं लेकिन उसका परिणाम आप पर नहीं होता है। जैसे अभी किसी का जूता चला गया, उधर किसका जूता था वो, तो वो जूता चला गया, वो जाना ही था, समझो कर्म के हिसाब से जाना था आज उसको, लेकिन उस पर दुख करना है कि नहीं करना है ये आपके हाथ में। हमने लिखा था हमारे बुक में कि मूल्यवान वस्तु वृंदावन बरसाना मत लेके आना, वो या तो बंदर या तो आदमी छीन लेगा उसको, इसलिए ऐसे आना कि लो भाई जो चाहिए वो ले लो, है ही नहीं कुछ तो क्या करेंगे, ऐसा है, ऐसा होना चाहिए। मैंने क्या कथा बताई थी आपको, सनातन गोस्वामी के साथ में वो दो चार लोग थे, सात सोने की मुरली लेके चल रहे थे, वो एक डेंजर लेके चल रहे थे, वो जैसे ही दे दिया एकदम मुक्त हो गए, वो भय मुक्त हो गए। तो वैसे ही हम लोगों को सबको भगवान के नाम का याद करना चाहिए। ये सब बात कहाँ से निकली थी कि यमुना जी वृंदावन में जब आती है तो दुखों के साथ पापों के साथ पुण्य को भी ले जाती है, आपको एकदम क्लीन बना देती है, दोबारा आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा बना देती है। और साथ साथ जब वृंदावन में आप यमुना में स्नान करते हैं तो उससे कृष्ण प्रेम और कृष्ण भक्ति की प्राप्ति होती है। तो ये जगह जो है जहाँ पर हम लोग बैठे हैं उसका नाम है इमली तला, बोलिए सब लोग इमली तला, बोलिए सब लोग यहाँ के, हाँ इमली तला मतलब इमली का पेड़, उसका तला मतलब शेल्टर छाया, ये तमाल का पेड़ है, ये कृष्ण का स्वरूप है हाँ, जिसके छाया में हम लोग बैठे हैं। तो अंदर एक पेड़ है इमली का, उसके अनेक कहानियाँ हैं इतनी अच्छी जगह में। पहली कहानी ये है कि ये यमुना किनारा जो है ना भगवान का रास लीला करने का जगह है, रास मंडल कहते हैं उसको। तो एक बार रास में जब गोपियों को गौरव हुआ कि मेरे साथ नाच कर रहे हैं, लेकिन वो अनंत रूप धारण करके सबके साथ नाच रहे कर रहे थे, लेकिन किसी को दिखाई नहीं पड़ रहे थे, उनको लग रहा था कि मेरे साथ ही नाच कर रहे हैं, मतलब मैं इतनी स्पेशल हूँ कि सबको छोड़कर मेरे साथ नाच कर रहे हैं। तो सबके मन में गर्व उत्पन्न हो गया, राधा रानी के मन में भी गर्व उत्पन्न हो गया। तो फिर कृष्ण भगवान ने सबको छोड़ दिया एक साथ, तो सबको ध्यान में आया और सब लोग को बताने लगे कि अरे पता है वो सबको छोड़कर मुझसे मेरे साथ नृत्य कर रहे थे। तो दूसरे ने भी वही बताया और सबने भी यही बताया तो उनको समझ में आया कि मेरे अकेले के साथ वो नहीं थे, सबके साथ में अनेक रूप बनाकर वो नाच करते थे। कोई गर्व की कोई बात ही नहीं है, लेकिन गर्व हो गया और कृष्ण को हम लोग खो बैठे। गर्व करने से कृष्ण तू चले जाते हैं, जहाँ गर्व है वहाँ कृष्ण रहते नहीं है, जहाँ नम्रता है वहाँ कृष्ण आ जाते हैं। तो फिर कृष्ण भगवान अंतर्धान हो गए और इस यहाँ जगह इस पेड़ के नीचे आके बैठ गए, और कृष्ण को भी उनका विरह सहन नहीं हो रहा था। वो लोग वहाँ से गीत गाते गाते आ रही थी, पेड़ों को पत्तों को डालियों को पूछ रही थी, आपने कृष्ण को देखा है कहीं, और वो पूछते पूछते आती है तो यहाँ पर कृष्ण बैठे हुए हैं और राधा रानी पर ध्यान करते रहते हैं, राधा रानी के चरणों पर ध्यान करते रहते हैं। तो राधा रानी के ऊपर ध्यान करते करते उनका रंग जो है वो गौरांग स्वर्ण रंग बन जाता है, वो राधामय हो जाते हैं, इतना वो गहरा ध्यान करते हैं। और जब ये गोपियाँ पूछते पूछते यहाँ पहुँच जाती है तो उनको गोल्डन येलो कलर के भगवान दिखाई पड़ते हैं, मोर पंख पहना हुआ है, पीताम्बर पहना हुआ है, धोती पहनी, सब कुछ वैसा ही है लेकिन रंग गोल्डन है। तो उनको लगता है कि हमारे कृष्ण तो सांवले रंग के हैं, तो वो बहुत चर्चा करते हैं कि क्या है ये, मतलब हमने कभी देखा नहीं ऐसे व्यक्ति को जो गोल्डन रंग का है, वो पीताम्बर धारण करता है और मोरपंख पहनता है। तो फिर राधा रानी आगे आई और उन्होंने कृष्ण को हाथ लगाया, जैसे हाथ लगाया तो कृष्ण भगवान भाव से नॉर्मल हो गए, मतलब भाव में थे, वापस आ गए, वापस सांवले रंग के हो गए। तो श्री कृष्ण भगवान ने जब आँख खोली तो राधा ने पूछा कि ये क्या है, इसका रहस्य क्या है। तो राधा रानी कृष्ण भगवान ने बताया कि जब मैं आप लोगों को छोड़ के यहाँ पर आया तो मैं भी व्याकुल हो गया था, और आप लोगों की याद में राधा रानी के ध्यान में मैं बैठा यहाँ पर, तब मेरी ये अवस्था हुई और ये अवस्था में मुझे बहुत अति उत्कट आनंद का अनुभव हुआ। इसलिए मैं वादा करता हूँ कि आपका प्रेम, आपका जो मुझ पर प्रेम है, उसका मैंने थोड़ा सा अनुभव किया तो मेरे को इतना आनंद आया, तो मैं अगले अवतार में आपका भाव लेकर अवतार लूंगा। ये घटना इस जगह पर हुई है, कृष्ण भगवान राधा रानी का नाम लेकर गौर वर्ण के स्वर्ण वर्ण के हो गए थे। फिर जब चैतन्य महाप्रभु बनकर आए, वो 2 महीना के लिए आए थे कार्तिक के बाद, चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है वो राधा का भाव लेकर आए हैं, तो वो यहाँ पर बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते थे। क्या बोलते थे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब वो यहाँ पर बैठकर गौर वर्ण वाले कृष्ण भगवान हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते थे तो वो नीले रंग के हो जाते थे कृष्ण का ध्यान करते हुए। और वो गौर वर्ण के कैसे बन गए? जब उन्होंने राधा रानी को बताया कि मैं आपका भाव लेकर अवतार लूंगा, तो राधा रानी बोलती है कि मेरा भाव लेकर आओगे तो पागल हो जाओगे आप, इतना आनंद आएगा आपको कि आप कूदोगे, पानी में कूदोगे, पेड़ से कूदोगे, आपको होश ही रहेगा नहीं, इतना आनंद आएगा आपको। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि ऐसे भाव में आओगे तो आप गिर जाओगे, तो आप कष्ट होगा आपको, बहुत जख्म हो जाएगा आपको, तो मैं आपको रक्षा करने के लिए आप मेरी कांति जो है, मेरी कॉम्प्लेक्शन जो है, उससे आपको ढक दूंगी। इसलिए वो गौर वर्ण के हो गए। और वो गौर वर्ण के कृष्ण भगवान जब यहाँ पर आए और उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र का जप किया कृष्ण का ध्यान करते हुए, कृष्ण ने यहाँ ध्यान किया राधा का ध्यान करते। जब गौरांग महाप्रभु आए तो उन्होंने कृष्ण का ध्यान किया राधा के भाव में, तो गौर वर्ण के कृष्ण भगवान जो है वो सांवले रंग के हो गए। रोज हुआ करते थे, 2 महीने के लिए यहाँ पर बैठकर जप करते थे। तो उसको सिद्ध इमली का तला कहा गया है। सिद्ध मतलब उसके नीचे ऐसी अद्भुत लीलाएं हो गई है, तो वृक्ष सिद्ध हो गया है वो। उसी वृक्ष को जब एक बार राधा रानी बहुत जल्दी जल्दी में चल रही थी तो उसकी जड़ को पाँव लग जाता है उसका, और पाँव से जख्म हो जाती पाँव को। तो राधा रानी उस पेड़ को शाप देती है कि ब्रज में जो भी इमली का पेड़ होगा, पेड़ तो होगा लेकिन इमली का फल नहीं आएगा उसको। आप पूरे ब्रज में कहीं भी जाइए, बहुत सारे इमली के पेड़ हैं लेकिन एक भी इमली उसमें नहीं आती है। ये तीसरी कथा है। चौथी कथा ऐसी है यहाँ की कि आप सब जानते हो कि भगवान ने गिरिराज को उठाया, गोवर्धन पर्वत को उठाया, फिर इंद्र भगवान को पश्चाताप हुआ तो इंद्र ने आकर माफ़ी मांगी, और माफ़ी मांगने के बाद में इंद्र ने कहा कि मुझे आपका भी कुछ ना कुछ करना है आपके लिए, मैंने इतना बड़ा अपराध किया तो आप कुछ सेवा करनी चाहिए आपकी। बोले क्या करना चाहते हो? तो भगवान ने उन भगवान को उनने कहा कि मैं आपका अभिषेक करना चाहता हूँ। गौरस यानी कि दूध से सुरभि के और आकाश गंगा के जल से। तो इंद्र का जो है ना हाथी ऐरावत पांच सुंड वाला, वो आकाश में जाकर स्वर्ग में जाकर आकाश गंगा का पानी लेके आता है, कुंड भर देता है यहाँ पर, और सुरभि का अपना दूध देती है, और इन दोनों से मिलकर भगवान का अभिषेक होता है, और भगवान का अभिषेक होने से वहाँ पर गोविंद कुंड निर्माण होता है। वो गोवर्धन में है, हम लोग नहीं जा पाए वहाँ पर, तो गोवर्धन में जहाँ पर उनका अभिषेक किया गया वहाँ पर गोविंद कुंड तैयार हो गया। और इंद्र ने तभी ऐलान कर दिया कि भगवान ब्रज के राजा हैं, गोविंद यानी गौ के राजा, इंद्रियों के राजा और भूमि के राजा, ऐसे करके वृंदावनेश्वर बन गए वो। तो ये खबर गोपियों को मिली कि वहाँ पर गोवर्धन पे इंद्र ने भगवान कृष्ण का अभिषेक किया, उसको राजा बना दिया, तो हम भी यहाँ पर आएंगे और राधा रानी को वृंदावन की रानी बनाएंगे। तो सब गोपियाँ राधा रानी को यहाँ पर लेके आई है और इस पेड़ के नीचे बैठकर सिंहासन में बिठाकर उनको अभिषेक किया उनका, और उनको वृंदावनेश्वरी नाम से घोषित किया यहाँ पर, सिर्फ वृंदावनेश्वरी राधा रानी की। तो ये बड़ा अद्भुत स्थान है, अभी इसका जीर्णोद्धार हुआ है, पहले बहुत ये जीर्ण था स्थान, लेकिन हम लोग 30 साल पहले से यहाँ पर जप करने को आते थे, क्योंकि भगवान ने यहाँ पर जप के बारे में 2 महीना प्रवचन दिया है। स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने यहाँ पर 2 महीने के लिए हर रोज भक्तों को भगवान के नाम के जप के विषय में रोज प्रवचन दिया हुआ है, और खुद भी जप किया है यहाँ पर, तो इसलिए जप की स्थली है, बहुत पावरफुल स्थली है, बहुत बड़ा शक्ति इस जगह पर है जो इस जगह पे जप करता है। और भगवान जब जप करते थे तो यमुना जी को सामने से प्रेम से निहारते हुए यहाँ बैठकर यमुना जी को देखते हुए जप करते थे। आप भी सब लोग यमुना जी को देखिए, जितना हो सके उतना टर्न करके देखिए, और यमुना जी को देखकर हाथ जोड़िए और हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये यमुना जी जो है ये भगवान के एक विशिष्ट भक्तों में से हैं। आपको शायद पता होगा कि मालूम नहीं, भगवान ने 8 पटरानियों से विवाह किया, उनकी 8 पटरानियाँ थी और 16,100 और कन्याओं से विवाह किया उन्होंने। वो नरकासुर के जेल में बंद थी वो सब लोग, 16,100 उनके साथ एक साथ विवाह किया उन्होंने। नरकासुर को मारा तो ये लड़कियाँ बोली अभी हम लोग मुक्त हो गए, लेकिन हम लोग मुक्त हो के फ़ायदा क्या है, राक्षस के घर में इतने साल रहे तो हमारे साथ कोई विवाह नहीं करेगा, माता पिता भी स्वीकार नहीं करेंगे, तो क्या फ़ायदा है मुक्त हो के, आत्महत्या करना एक ही रास्ता बचता है। तो भगवान ने ऐसे निराश युवतियों को बताया आप चिंता मत करना, मैं आपको अपनी पत्नी बनाऊंगा, तो आप द्वारकाधीश की पत्नी के रूप में आपका सम्मान होगा, आपको एक स्थान मिलेगा, मैं आपको स्वीकार करता हूँ। तो फिर ऐसे दुखी औरतों को उन्होंने विवाह करके अपनी पत्नी का सम्मान दिया। लोग सोचते हैं कि कितने कामुक है भगवान, कितने लस्टी हैं, उनको इतनी स्त्रियाँ काफ़ी नहीं होती, और स्त्रियाँ चाहिए उनको, ऐसा नहीं है। हमारे 100 साल पहले सऊदी अरब के राजा हैं, उनका नाम सऊद है, सऊद किंग सऊद, जिसके नाम पे सऊदी अरब नाम पड़ा है, उस राजा की भी 300 पत्नियाँ थी। वो क्या करता था, जब अपने गांव-गांव में घूमता था तो कोई गरीब औरत है जिसका कोई पिताजी नहीं माताजी नहीं अनाथ है वो, या कोई बुढ़ी पीड़ित है या दुखी है, तो उनको वो अपनी पत्नी बनाता था। और राजा की पत्नी कौन बनती है, रानी बनती है, उसका सम्मान होता है, उसका ऐश्वर्य प्राप्त होता है। तो ऐसे बहुत ही असहाय औरतों को उसने विवाह करके एक सम्मान दिया, ऐसा नहीं कि भोग के लिए उसने इतनी पत्नियां बनाई। तो भगवान ने भी 16,100 रानियों को इस दया के कारण अपनी पत्नी बनाकर सम्मान दिया, एक सामाजिक स्तर में सम्मान दिया। तो बाकी जो 8 पत्नियां हैं, एक तो रुक्मिणी है, सत्यभामा है, जाम्बवती है, लक्ष्मणा है, मित्रविंदा है, नग्नजीति है, सत्या है, तो उसमें एक है यमुना जी, 5वीं पत्नी है भगवान की। तो यमुना जी का जन्म जब हुआ ना तो वो नदी रूप में बह रही थी पृथ्वी पर, और भगवान का इंतज़ार कर रही थी कि भगवान आएंगे और मुझे उनसे ही विवाह करना है। तो अपने पिता को उन्होंने कहा था कि मैं विष्णु भगवान जो परम भगवान हैं उनके अलावा किससे विवाह नहीं करूंगी, और जब तक विवाह नहीं होता है तब तक मैं मेरे ही जल के अंदर मुझे घर बना दो, मैं वहां तपस्या करती रहूंगी। तो पिताजी ने उसके ही जल के अंदर तल में उसको घर बना दिया और जमुना जी देवी के रूप में अपने ही जल के अंदर बैठकर तपस्या करती थी विष्णु का इंतजार करते हुए कि विष्णु आएंगे भगवान और मुझसे विवाह करेंगे। तो कहानी बहुत सुंदर है, आप सुनिए सब लोग, आपको नींद नहीं आ रही ना। मैं आपको बधाई देता हूँ कि आप लोग इतने धूप में बैठे हुए हैं और थैंक यू वेरी मच, इतना धूप होते हुए आप लोग बैठे हुए हैं कथा सुनने के लिए। भगवान बड़े प्रसन्न होंगे आपसे, हाँ, क्योंकि ठंडी हवा में एसी में सब लोग बैठते हैं कथा सुनने के लिए, लेकिन कष्ट में बैठना कथा सुनना ये बड़ी बात है बहुत। तो अर्जुन के पास जब भगवान कुछ दिन रहने आए थे हस्तिनापुर में, इंद्रप्रस्थ में एक्चुअली, तो एक दिन भगवान ने कहा चलो शिकार करेंगे, आपका युद्ध कौशल देखेंगे, कितना युद्ध में आपने निपुणता प्राप्त की। तो भगवान ने जंगल में जाकर बहुत अर्जुन का कौशल देखा, अर्जुन ने बाण मारे, बहुत सारे खूंखार जानवर को मारा। फिर भगवान के पास अग्निदेव आए, बोले कि मुझे बहुत बीमारी हो गई है, मुझे जंगल खाने की ज़रूरत है, जलाकर भस्म करने की ज़रूरत है, तब मैं बीमार से ठीक हो जाऊँगा, लेकिन मुझे बाकी देवता लोग अलाउ नहीं करते हैं, इसलिए मैं आपसे विनती करने आया हूँ, मैं बीमार हूँ। तो भगवान ने खांडव वन है ना, खांडव वन उसको जला दिया और अग्नि को स्वाहा कर दिया, तो अग्नि की बीमारी ठीक हो गई। तो अग्नि प्रसन्न हो गए, तो अग्नि ने भगवान को सुदर्शन चक्र दिया और अर्जुन को ऐसे बाणों का तोड़ीर दिया कि वो बाण कभी भी खाली नहीं जाएंगे, और कैसे अक्षय भाता दिया उसको, मतलब जितना बाण निकालेंगे उतना बाण नए बनेंगे उसके अंदर, अनलिमिटेड, और धनुष दिया उनको और बहुत खुश हो गए वो। तो अग्नि को संतुष्ट करने के बाद में भगवान जमुना किनारे बैठे थे, क्योंकि जमुना दिल्ली में भी है, मालूम है ना आपको, आज की दिल्ली तब की इंद्रप्रस्थ, तो खांडव वन भी उधर था। तो जमुना किनारे थक के बैठे थे, उन्होंने कहा अर्जुन मुझे प्यास लग रही है, आप थोड़ा पानी लेकर आओ। तो अर्जुन भगवान के लिए पानी लेने के लिए जमुना जी किनारे गए, तो जब वो यहाँ पर पानी लेने गए तब वहाँ पर जमुना देवी अपने तपस्या के स्थान से बाहर आकर किनारे में घूम रही थी। अर्जुन को देखकर वो समझ गई थी कि अर्जुन के साथ कृष्ण जरूर होंगे, भगवान का भक्त है, तो जानबूझ के बाहर आई वो। तो ये पानी भरने गए थे, वो पूछने लगे कि हे सुंदर युवती तुम कौन हो, इतने अकेले जगह पर क्या कर रही हो, लगता है आपको किसी से विवाह करना है, पति ढूंढ रही हो, बताओ आपका मन में क्या है। तो बताती कि मैं जमुना हूँ, सूर्य की पुत्री हूँ, और केवल भगवान विष्णु पति के रूप में प्राप्त होना चाहिए, इसलिए तपस्या कर रही हूँ। तो आप भगवान के मित्र हो मैं जानती हूँ, जाके भगवान को मेरी सिफारिश कीजिए, मैं इंतज़ार कर रही हूँ। तो अर्जुन पानी लेते हैं, भगवान को जल पिलाते हैं, बोलते हैं कि मुझे यहाँ पर एक कन्या की मुलाकात हुई, वो कह रही है कि वो जमुना है और वो उसके जल के अंदर तपस्या कर रही है आपको पति प्राप्त करने के लिए। तो भगवान झट से उठते हैं पानी पीकर, स्ट्रेट जाकर उसका हाथ पकड़ते हैं, उसको रथ में बिठाते हैं और घर ले जाते हैं और कुंती माता को सौंप देते हैं। मैंने कहा जब मेरा कार्य पूरा होगा तो इस कन्या को मैं मेरे द्वारका में लेके जाऊंगा और विवाह करूंगा। तो जमुना देवी का कार्य समाप्त होने के बाद में उन्होंने भगवान ने हाथ स्वीकार किया है और कुंती देवी ने उनको बड़े प्रेम से संभाला है कुछ समय के लिए, और फिर द्वारका में जाकर उनका विवाह हुआ है। तो यमुना जी भगवान की एक पटरानी में से एक है, पंचम रानी है वो, और वृंदावनवासी भी है, ब्रजवासी पत्नी है भगवान की, वो वृंदावन में रहती है, सबका कल्याण करती रहती है। और उनकी विशेषता ये है जमुना जी की कि जितनी भगवान की लीला हुई है वो सबके साक्षी है वो, चाहे ग्वाल बाल की लीला हो, चाहे रास लीला हो, चाहे माँ की लीला हो, चाहे मोर की लीला हो, हर लीला यमुना किनारे हुई है। मैंने आपको कहा ना भगवान को डांस किसने सिखाया, वो डांस कहाँ सिखाया, एड्रेस क्या है उस स्कूल का, बैंक ऑफ जमुना यमुना किनारा, उनका मुरली भी उन्होंने सिखाया उनको, यहीं सिखाया, डांस भी सिखाया तो यमुना किनारे सिखाया, और जितनी लीलाएँ की हैं उसमें अधिकतर लीला उन्होंने यमुना किनारे में की है। तो यमुना बड़ी भाग्यशाली देवी है, वो भगवान के पांचों रसों की लीला का अवलोकन करती है और आनंद प्राप्त करती है, और उसके पास जो भी जाता है आश्रय प्राप्त करने के लिए उसको आश्रय देती है और भक्ति प्रदान करती है। बोलो जमुना मैया की जय हो। आप सब लोग जमुना जी को निहारो, प्रेम से प्रार्थना करो कि हमें भक्ति दो। आप अरविंद बंधु नंदिनी, यानी आप सूर्य की नंदिनी हो, पुत्री हो, और आपके लिए वरदान है कि आप यमराज के भय से हमको बचाती हैं, तो हमें भी यमराज के भय से बचाइए और भगवान के चरणों में सुपुर्द कीजिए। श्री जमुना मैया की जय।